सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूनं हन्ताय मज्झरह्या जाय जरामरणनन्तपोरढा संसारलयातमहम् जीर्णच्छिन्नाजिनम् वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति नाम का है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 83 पर आ गए। 83। कल हम विशेषार्थ पढ़ रहे थे, यहाँ अपना नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट विभक्ति का स्थिति विभक्ति का काल, उसकी बात अपनी चल रही थी। विशेषार्थ में हमने देखा था कि नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति का बंध कम से कम एक समय तक और लगातार होता रहे तो पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक। एक जीव की अपेक्षा देखा था तब लगातार अंतर्मूर्त तक देखा था, परंतु यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। और हमने देखा था कि जो अनुत्कृष्ट स्थिति होगी उसका काल कितना होगा, सर्वकाल, सदाकाल, सर्वकाल है, ये तो हमने ओघ में देखा था। अन्य कितनी ही मार्गणाओं में भी ऐसी ही बात घटित होती है, जैसे नारकी आदि जो है सामान्य तिर्यंचे सामान्य देव है, उनमें भी ये बात घटित होती है। मनुष्यों में अलग से घटित किया था मार्गणाओं में। अब जो कोई सांतर मार्गणाएं हैं उनको छोड़कर अन्य सभी मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हमेशा ही पाए जाएंगे, इसलिए उसको कहा था सर्वदा है। अब यहाँ हम पृष्ठ संख्या 83 पर ऊपर से 9 लाइन तक हमने पढ़ी थी, 10वीं लाइन में हम प्रारंभ कर रहे हैं कि पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों में, अभी उत्कृष्ट स्थिति की बात हमने देखी, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल एक समय बतलाया है। कब होता है? पहले समय में अन्य पर्याय से उत्कृष्ट स्थिति के साथ आया हुआ है, उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति तो पहले समय में घटित होता है। अब यदि नाना जीव निरंतर उत्कृष्ट स्थिति के धारक हो तो वे आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक ही होंगे। निरंतर यानी हमेशा तो कोई ना कोई उस पर्याय में तो हो गए हो, पर उस पर्याय में उत्कृष्ट स्थिति के साथ जन्म लेने वाले जीव लेना चाहिए। तो लगातार अगर निरंतर का अर्थ होता है लगातार अगर उसमें पाए जाए तो आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक ही होंगे। उसके बाद इनमें उत्कृष्ट स्थिति का नियम से अंतर काल आ जाता है, बीच में गैप पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर दोबारा उसमें उत्कृष्ट स्थिति वाले उत्पन्न हो गए। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण कहा। मूल में निर्दिष्ट ने बताए हुए सब एकेंद्रिय आदि कुछ मार्गणाओं की स्थिति इसी प्रकार की है, क्योंकि उनमें भी पहले समय में उत्कृष्ट जहाँ जहाँ घटित होता है वहाँ ऐसी ही पोजीशन होगी, क्योंकि लगातार उत्कृष्ट के साथ उसमें जीव आना चाहिए, तो इसे आवली के असंख्यात भाग काल तक ही ऐसा लगातार हो सकता है। अतः इनमें भी उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। उक्त प्रमाण ने कितना कहा देखा हमने भी, आवली का असंख्यात्वा भाग। सामान्य हाँ, हर एक में अपना अपना अवलिक असंख्यता भाव, उत्कृष्ट स्थिति के साथ उसमें आए हुए जीव। हाँ, बादर में उनके योग्य जो एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब एक इंद्रियादि में लब्धिया पर्याप्त में हमने देखा था, अंतर्मूर्त के बाद आते हैं मनुष्य और तीरियंचों में आएंगे, उनमें से आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म में अपर्याप्तों में देव तो नहीं आ सकते, बांदर एक इंद्रिय पर्याप्तों में आ सकते हैं। सामान्य आदि तीन प्रकार के मनुष्यों में एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये तीन प्रकार के मनुष्य कौन कौन से हैं? सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी। क्योंकि एक समय से लेकर उत्कृष्ट कितना है? अंतर्मूर्त। क्यों? वे स्वयं बांधते हैं उत्कृष्ट स्थिति, इसलिए बांधने वाले की अपेक्षा से यहां बात लेनी है। अन्यत्र हम घटित करते लब्धि अपर्याप्तकों में, सूक्ष्मों में, अन्य पर्यायों में बांधकर यहां आए हुए जीव लिए थे, तो वो पहले समय में घटित होता है। अब यहां ये जीव स्वयं ही उतनी स्थिति बांध रहे हैं, तो उनकी उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त तक रहेगी, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का बंध लगातार किसी जीव को होगा, एक जीव को, तो अंतर्मूर्त तक होता है। अब यहां संख्या जीव होगी मनुष्यों में नाना जीवों की अपेक्षा, तो भी वो अंतर्मूर्त घटित करेंगे हम। परंतु इनका प्रमाण संख्यात है, अतः लगातार संख्यात नाना जीव भी क्रमशः यदि उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो तो भी उस सब काल का जोड़ अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होगा। ये बात महत्व की है। एक जीव को तो अंतर्मूर्त लगता ही है, अन्य अन्य जीव उसमें उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले होंगे, तो भी वो लगातार वो निरंतर काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा। यही कारण है कि इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। यद्यपि सामान्य मनुष्यों की संख्या असंख्यात है, परंतु यहाँ वो उत्कृष्ट बांधने वाले कौन है तो पर्याप्त ही है, तो उनकी अपेक्षा से ही सामान्य में कथन होगा। सामान्य में चूंकि हमने कहा अंतर्मूर्त, फिर भी उसमें करने वाले कौन है? पर्याप्त जी। फिर पढ़ते हैं इसको। यद्यपि सामान्य मनुष्यों की संख्या असंख्यात है, फिर भी यहाँ उत्कृष्ट स्थिति के प्रकरण में सामान्य मनुष्यों में लब्धि अपर्याप्त मनुष्य प्रधान नहीं है, क्योंकि उनमें ये उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव उनमें नहीं होंगे, उनमें तो अंतर्मूर्त कम वाले होंगे। जब उनकी अलग से मार्गणा लेंगे तो उनको वहां बताएंगे। आनतादि कल्पों में उत्पन्न होने के पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति संभव है। हमने देखा था ना, आनत से लेकर ऊपर के पहले समय में उत्कृष्ट है, बाद में वो घटते चले जाते हैं, क्योंकि वहां का बंध और स्थिति से भी अल्प है, तो जितनी स्थिति है उसमें से एक एक निश्चय गलता चला जाएगा। आनतादि कल्पों में उत्पन्न होने के पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति संभव है, जिसका काल एक समय है, और यहां मनुष्य जीव ही मरकर उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों कहा? मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। हाँ हाँ, जरा जोर से। हाँ, तो क्या तीर्यंच नहीं उत्पन्न होते? नहीं, मेरा प्रश्न है तीर्यंच कहाँ तक उत्पन्न होते हैं? 16वें तक। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा? बोलो। हाँ, तो वो वहां कौन से जीव उत्पन्न होते तीर्यंचों में से? संयता संयत वाले, सम्यक दृष्टि तो है ही, पंचम गुण स्थान वाले जाएंगे तीर्यंच इतने ऊपर। यहाँ किसकी बात चल रही है? उत्कृष्ट स्थिति किसके होगी? मिथ्या दृष्टि के होगी, उनके योग्य उत्कृष्ट स्थिति जो कोई अंत कोड़ा कोड़ी है। तो ये तिर्यंच तो इतना कब करेंगे तो सम्यक दृष्टि हो गए, संयता संयत हो गए तो ही वहां उत्पन्न हो गए। तो यहाँ क्या कहा देखो, यहां मनुष्य जीव ही मरकर उत्पन्न होते, कहा ना उत्कृष्ट स्थिति की बात है। उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले हाँ मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की बात है यहां पर। अब यदि आनतादि कल्पों में उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव, उनके योग्य उत्कृष्ट स्थिति जो कुछ है लगातार उत्पन्न हो तो संख्यात समय तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही संख्यात है, उनमें से मरकर वहां उत्पन्न हो गए तो संख्यात ही उत्पन्न हो सकते हैं संख्यात समय तक, क्योंकि उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य ही संख्यात है। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल संख्यात समय का, ये बात ख्याल में आ रही है हाँ? संयता संयत तीरेंच उत्पन्न हो गए तो उनकी स्थिति कितनी होगी, बहुत छोटा अंत यानी अंत कोड़ा कोड़ी है परंतु उसका प्रमाण और कम होगा। और यहाँ उत्कृष्ट स्थिति मोहनीय की किसके होगी, मिथ्या दृष्टि के। फिर भी आनत आदि में उत्पन्न होने वाले शुक्ल लेशा वाले हो गए तो उनकी स्थिति अभी वहां का हाँ भले अंत कोड़ा कोड़ी है फिर भी वो ज्यादा हो गए। यहाँ पहले वाले को ही लेना है हाँ। मिथ्यात्व की ही बात चल रही है, उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि के ही होती है। अब कहते यही बात मन परे ज्ञान आदि मूल में गिनाई गई शेष मार्गणाओं में जानना चाहिए। आप कहेंगे मन परे ज्ञान ही तो सम्यक दृष्टि है, मुनि है, उनके योग्य जो उत्कृष्ट स्थिति है वो कब होगी, पहले समय में, क्यों बाद में क्यों नहीं होगी, क्योंकि नई जो बंध नया बंध है वो स्थिति से भी कम होता है और लगातार एक एक निषेध गलता जा रहा है, तो इसलिए पहले समय में जो उत्कृष्ट स्थिति है बाद में वो एक एक समय से घटती चली जाएगी। यानी वहां ये कथन वही है कि पहले समय में होता है, तो पहले समय में होता है तो मन परे ज्ञान में या मन परे ज्ञान जिनके उत्पन्न होता है ऐसे जीव कितने हैं, संख्यात है, और उसमें भी उत्कृष्ट स्थिति वाले होने चाहिए, तो लगातार कोई हो तो कितने हो गए, तो संख्यात समय हो गए, ये बात यहां बताना चाहते हैं। अब रही सांतर मार्गणाओं और अपगत वेद आदि तीन मार्गणाओं की बात। अपगत आदि तीन में कब किस किस को गिनाते हमेशा हम, अपगत वेदी अकषाय और यथाकथ संयत वो तीन, और अन्य सांतर मार्गणाएं जो आठ है। सो इनमें काल का खुलासा निम्न प्रकार है, उसमें एक है लब्धि अपर्याप्त मनुष्य जो सांतर मार्गणा है। तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बतलाया है। जघन्य लगातार हो तो जघन्य काल कितना, एक समय तक रहे उत्कृष्ट स्थिति, और अधिक से अधिक वो भी एक ही समय, क्यों, क्योंकि पर्याप्त में से उत्कृष्ट स्थिति बांधकर अंतर्मूर्त कम वाला यहाँ आया है तो उसके पहले ही समय में यह घटित हो सकता है, बाद में तो कम स्थिति बांधेगा बाद में घटते चला जाएगा। अब यदि अंतर के बाद यानी कभी ऐसा हो कि एक भी लब्धि पर्याप्त मनुष्य इस विश्व में नहीं है और बाद में वहां उत्पन्न हो, तो अंतर के बाद नाना जीव एक साथ उत्कृष्ट स्थिति के धारक हुए तो दूसरे समय में उनकी नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। क्यों, एक साथ मान लेते 10 जीव वहां आए उत्पन्न हुए तो उत्कृष्ट स्थिति कब होती है, पहले समय में, दूसरे समय में कौन सी होगी, अनुत्कृष्ट हो जाएगी। अतः लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में नाना जीवों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि जो अनुत्कृष्ट हो गए और उसके पश्चात वाले समय में कोई वहां नहीं आया नया जीव उत्कृष्ट स्थिति वाला, हो सकता है ना, अंतर हो गया मान लेते कोई भी नहीं आया या उत्कृष्ट वाला नहीं आया, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो उसका जघन्य काल एक समय होगा। उत्कृष्ट स्थिति नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय घटित होता है। यही बात शेष मार्गणाओं में जान लेना चाहिए। शेष ऐसी कौन कौन सी मार्गणाएं हमने देखी थी जो लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों के जैसी थी? वैकृत मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ऐसे ये अन्य भी मार्गणाएं हमने देखी थी उसमें। देखो यहाँ 82 पृष्ठ पर मनुष्य लब्धि अपर्याप्त हुए, उतनी सिमिलैरिटी उसके लिए जघन्य एक समय वाली, वो क्योंकि सांतर मार्गणा है, निरंतर मार्गणा होते हुए भी जिनका पहले समय में घटित होता है और जो मनुष्यों में ही घटित होते हैं, इसे भी मन परिज्ञानी वगैरह को भी हमने ऐसा ही लिया था, परंतु उनमें अंतर नहीं है। हमने यहाँ जो अन्य मार्गणाएं देखी थी, एक तो वैकृत मिश्र का योगी देखा था, उपशम सम्यक दृष्टि देखा था, सम्यक मिथ्या दृष्टि देखा था, सासाधन देखे थे। आगे पढ़ते अभी, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य यदि निरंतर उत्कृष्ट स्थिति के धारक होते रहे तो, निरंतर की बात है, तो आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक ही होंगे। ये लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, अभी उत्कृष्ट स्थिति को भूल जाओ, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य ये मार्गणा है ना, वो निरंतर रहे तो कितने काल तक रह सकते हैं? आवली के नहीं, पल्ले के असंख्यात होगा। मैंने क्या पूछा? उत्कृष्ट स्थिति वाले नहीं पूछा। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य है, कोई ना कोई है उसमें, ऐसा लगातार चलता रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक, परंतु उनमें उत्कृष्ट स्थिति के साथ कोई ना कोई जन्मता है, क्योंकि पहले समय में घटित करना है। अनुत्कृष्ट वाले भले पल्ले के असंख्यात भाग काल तक रहे, उत्कृष्ट वाले निरंतर रहे तो आवली के असंख्यात भाग उत्कृष्ट उसका काल, ये समझ में है? जघन्य कहे तो एक समय, और उत्कृष्ट कहे तो आवली का असंख्यात भाग काल, उत्कृष्ट स्थिति के धारक। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण कहा। यही बात वैकृत मिश्र का योगी, अब ये भी सांतर मार्गणाएं हैं, उनमें भी लगातार कोई ना कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति के साथ आए तो आवली के असंख्यात भाग, उपशम सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि मार्गणाओं के विषय में जानना चाहिए, तथा उत्कृष्ट स्थिति के धारक, क्योंकि इनमें उत्कृष्ट स्थिति पहले समय में घटित होती, इसलिए अनुत्कृष्ट की बात करेंगे तो जघन्य अंतर्मूर्त घटित करेंगे यहाँ पर, नहीं समझे? क्योंकि ये सांतर मार्गणा है तो अनुत्कृष्ट में जघन्य से जघन्य काल कितना, क्योंकि कोई भी जीव आता है तो अंतर्मूर्त तो रहेगा, और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य में उत्कृष्ट वाला एक समय कम करके क्षुद्र भवन भी कहेंगे हम, उसकी बात अभी नहीं बताई उन्होंने, हम सोचेंगे ना थोड़ा आगे क्या। यहाँ तो उत्कृष्ट स्थिति की जघन्य और उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। तो यही बात वैकृत मिश्र कायोगी उपशम सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्य दृष्टि मार्गणाओं के विषय में जानना चाहिए, तथा उत्कृष्ट स्थिति के धारक लब्धि अपर्याप्त मनुष्य एक साथ उत्पन्न हुए और दूसरे समय से उनका उत्पन्न होना ही बंद हो गया तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय कम खुद्दा बहुग्रहण प्रमाण प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट स्थिति के धारक एक समय के लिए उत्पन्न हुए, एक समय के लिए उत्कृष्ट स्थिति में, वो दूसरे समय क्या हो जाएंगे? अनुत्कृष्ट वाले, और फिर लगातार जितका लब्धि अपर्याप्त का काल है उतने काल तक कोई जीव उसमें उत्पन्न नहीं हुआ। मान लेते 10 जीव उत्कृष्ट स्थिति के साथ आए हैं और पहले समय में वो उत्कृष्ट स्थिति वाले थे, हम लब्धिय पर्याप्तक का काल मान लेते हैं, 100 समय का मान लेते हैं, तो एक समय उनका उत्कृष्ट स्थिति के साथ गया। अब दूसरे कोई जीव उसमें उत्पन्न ही नहीं हुए, अनुत्कृष्ट के भी नहीं हुए और उत्कृष्ट के भी नहीं हुए, तो क्या होगा? जो उत्पन्न हुए हैं वो उस भव में तो रहेंगे ना उतने काल तक, मिनिमम कितना रहेंगे? खुद्दा भव ग्रहण, और उसमें से एक समय उनने उत्कृष्ट स्थिति में बिताया है, तो उनका अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल कितना हुआ? एक समय कम खुद्दा भव ग्रहण। ये बात ख्याल में आई? एक समय क्यों कम किया? क्योंकि ऐसे जीव लिए कि जो उत्कृष्ट के साथ आए थे, एक समय के लिए उत्कृष्ट स्थिति थी, और रिमेनिंग जो काल है खुद्दा भव ग्रहण में से एक समय कम, इतने काल तक अनुत्कृष्ट स्थिति के साथ रहे, प्रोवाइडेड उतने काल में कोई दूसरा जीव उसमें अनुत्कृष्ट वाला नहीं आया है, ना उत्कृष्ट वाला आया नहीं अनुत्कृष्ट वाला आया। देखो फिर इसको पढ़ेंगे नीचे से छठी लाइन में, तथा उत्कृष्ट स्थिति के धारक लब्धिय पर्याप्त मनुष्य एक साथ उत्पन्न हुए और दूसरे समय से उनका उत्पन्न होना ही बंद हो गया, तो लब्धिय पर्याप्त मनुष्यों में अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण प्राप्त होता होगा, क्योंकि जो उसमें उत्पन्न हुए हैं वहां की आयु पूरी तो करेंगे और उसमें से एक समय तो उत्कृष्ट के साथ बिताया है। तथा अब ऐसे लेना है कि ये अनुत्कृष्टों में अधिक से अधिक काल घटित करना है, तो जब तक इनकी आयु पूरी होती है तब तक और नए नए जीव उसमें उत्पन्न होते रहेंगे, उत्कृष्ट वाले हो गए तो भी फिर दूसरे समय में अनुत्कृष्ट वो भी हो जाएंगे, तो ऐसा लगातार चलता रहेगा, तो पल्ले के असंख्याते भाग। तथा लब्धि पर्याप्त मनुष्यों का उत्कृष्ट काल, पहले उस मार्गणा का उत्कृष्ट काल बता रहे, इसलिए लब्धि पर्याप्त मनुष्यों का उत्कृष्ट काल कहा, यानी लगातार कोई ना कोई जीव लब्धि पर्याप्त पर्याय में है ऐसा कितने काल तक अधिक से अधिक हो सकता है, तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल, अनुत्कृष्ट किसके लिए लिया? स्थिति के लिए। अनुत्कृष्ट जिनकी स्थिति है, ऐसे जीव निरंतर होते रहे तो उनका काल कितना है? इतना ही है ने पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। ख्याल में आया कैसे घटित कर रहे हैं? जो सांतर मार्गणाएं होती है तो उनमें उस मार्गणा का जितना काल है उतना अनुत्कृष्ट का मैक्सिमम काल, उत्कृष्ट काल, और जघन्य काल उस मार्गणा का जघन जो काल होगा उसकी अपेक्षा से। जैसे लब्धि पर्याप्तक में क्षुद्र भव है और उसमें एक समय तो हमने माइनस कर दिया, अब सासादन वाले का काल ही एक समय है, तो उसमें अनुत्कृष्ट का भी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट उसमें पल्ले का असंख्यातवा भाग काल तक होगा, इस तरह से हमको सोचना है। उत्कृष्ट स्थिति के धारक अगर उत्पन्न होते रहे निरंतर, यानी हम मान लेते 10 समय तक लगातार कोई ना कोई जीव उसमें आएगा, तो 10 समय तक उत्कृष्ट वाले होगी ना, क्योंकि जो पहले समय में आया है वो दूसरे समय में अनुत्कृष्ट होने वाला ही है, क्योंकि उसका एक निषेक गल जाएगा, अब उसको हम गिन नहीं सकते, उसको पहले समय में गिना, दूसरे समय में किसको गिनेंगे? जो अन्य जीव आए हैं उत्कृष्ट के साथ, फिर तीसरे समय भी कोई ना कोई आए हैं, ऐसे लगातार आवली के असंख्यात भाग काल तक उत्कृष्ट स्थिति के साथ उसमें निरंतर यानी प्रति समय कोई ना कोई उत्पन्न हुआ है। और यहाँ जो हम अनुत्कृष्ट की बात कर रहे हैं वहां भी उत्कृष्ट काल ही लिया, यहाँ अनुत्कृष्ट में मार्गणा का उत्कृष्ट काल लिया, वहां उत्कृष्ट स्थिति के साथ निरंतर उत्पन्न होने वाले जीव लिए। अनुत्कृष्ट काल एक समय कैसा होगा? कोई जीव आता है तो लब्धि पर्याप्त के पूरा काल तक रहेगा वहां पर, क्योंकि उत्कृष्ट पहले समय में है ना, इसलिए अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय नहीं होगा। वो उच्च मार्गणा का काल। हाँ ऐसा हो सकता है। परंतु वो आया है, परंतु एक समय तो नहीं घटित होगा ना। आया है तो वहां तो रहेगा पूरा, तो उसको पूरा खुदा बहुग्रहण कहेंगे। अब कोई उत्कृष्ट के साथ आया है तो उसका एक समय घटाया, इसलिए एक समय कम खुदा बहुग्रहण। हमको मिनिमम पॉसिबल कैसे जीव में हो सक, किस जीव में हो सकता है उसको देखना है, इसलिए एक समय कम किया। अब इसी प्रकार वैक्रेक मिश्र का योगी, इनमें भी पहले ही समय में उत्कृष्ट घटित होता है, तो लगातार कोई ना कोई उसमें आता रहे वैक्रेक मिश्र का योग में उत्कृष्ट स्थिति के साथ, तो अवलिका संख्या उपशम समय दृष्टि कोई ना कोई होता रहे। नाना जीव है ना, अनेक जीव होंगे, एक ही जीव की बात नहीं है, तो भी आवलिक है, उसमें भी असंख्यात समय चले जाते हैं ना। यानी लगातार इतने असंख्यात जीव उत्कृष्ट स्थिति के साथ गए हैं, अभी अनुत्कृष्ट के साथ गए वो अलग। सासाधन सम्यक दृष्टियों में भी ये होगा। तो अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जानना। वैक्रेक मिश्र लगातार होता रहे तो पल्ल का असंख्यात भाग काल तक जीव होते रहेंगे, उसमें अंतर पड़ेगा तो की बात है, वो आठ मुहूर्त की बात, बारह मुहूर्त और चौबीस मुहूर्त ऐसे जो है हम देखते हैं, अकेले नरक में अकेले देव में लेना है तो चौबीस मुहूर्त, और फिर दोनों को एक साथ वैक्रिक मिश्र लेना है तो बारह मुहूर्त होते हैं। हाँ लगातार होता रहे तो पल्ले के असंख्यात, हाँ क्योंकि जब तक वो अंतर मुहूर्त पूरा नहीं करते तो अन्य कोई उसमें आएंगे, गैप पड़ेगा तो कितना पड़ता है उसकी बात हमने देखी थी, अंतर पड़ेगा तो उत्कृष्ट कितना पड़ सकता है, तो उसमें हमने अंतर उपशम सम्यक दृष्टि हमने देखा था ना, सात दिन में होता है चौथे गुणस्थान के लिए, पंद्रह दिन चौबीस दिन ऐसे अलग अलग उसमें है ना। अब यहाँ जगन्य अंतर बता रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा भी वैक्रेक मिश्र का योगी उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का जगन्य काल, काल की बात है, अंतर की बात बाद में सोचेंगे हम, लगातार उसमें रहेगा तो कितने काल तक, अंतर मुहूर्त है, यहाँ सासाधन को छोड़ा है, अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल अंतर मुहूर्त कहा। यदि मनुष्य उपशम श्रेणी पर निरंतर चढ़े तो संख्यात समय तक ही चढ़ेंगे, उन सबके काल का जोड़ अंतर्मूर्त ही होगा, यानी जब तक वो उपशम श्रेणी में है। अतः अपगत वेद अकषाय, यानी उसका एक का काल अंतर्मूर्त है और संख्यात जीव लगातार चढ़ेंगे तो भी अंतर्मूर्त है, नहीं समझे, एक जीव अपगत वेद में लगातार कितने समय तक रहेगा, अंतर्मूर्त, अभी उपशम श्रेणी में हम घटित कर रहे हैं ना, और फिर लगातार कोई ना कोई आएगा उसमें तो संख्यात जीव आएंगे तो उनका भी काल अंतर्मूर्त होगा। अकषाय में भी ऐसा ही, एक जीव का काल अंतर्मूर्त है ही, परंतु लगातार संख्यात जीव उसमें आएंगे तो भी अंतर्मूर्त ही घटित होगा। ऐसे ही सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम में उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल संख्यात समय, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति के साथ आए तो पहला समय लेना है तो लगातार संख्यात जीव आएंगे तो संख्यात समय होगा, और अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म सांपराय संपराय हुआ, हाँ आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं इनका अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय होगा नाना जीवों की अपेक्षा से। एक हाँ कोई एक जीव आया और फिर नहीं, परंतु उस गुण अच्छा उपशम श्रेणी में मरण की अपेक्षा हो सकता है। हमने एक समय पहले देखा था ना इनका, ना देखो देखो जो हमने लब्धि अपर्याप्त तो मनुष्यों में घटित किया था उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय, यह 83 पृष्ठ पर नीचे से जहाँ तो लब्धि अपर्याप्त तो मनुष्यों की बात निकली थी 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 नीचे से 11 पृष्ठ में उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य समय प्राप्त होता है एक समय। उनमें अनुत्कृष्ट की भी बात हो सकती है कि एक ही जीव अनुत्कृष्ट के साथ उत्पन्न हुआ है, परंतु वहां तो अंतर्मूर्त रहेगा ही, वहां तो कोई लब्धि अपर्याप्त में जाने का सवाल नहीं था, परंतु यहाँ अपगत वेदी हुआ अनुत्कृष्ट होकर मरा। हाँ तो हो सकता सांसाधन सम्यक्त्व का जघन्य काल एक समय है, अतः इसमें अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल एक समय कहां शेष कथन सुगम है। इस प्रकार उत्कृष्ट कालानुगम समाप्त हुआ। अब जघन्य कालानुगम यानी जघन्य स्थिति का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, जघन्य स्थिति लगातार रहे तो की बात है। अब जघन्य कालानुगम प्रकरण है उस, अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात करनी है। एक जीव की अपेक्षा तो एक ही समय घटित होगा जघन्य का, अब यहाँ लगातार कोई ना कोई जीव जघन्य जघन्य करता रहे, उसका अर्थ क्या है? लगातार अनेक समयों में जीव सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में आएंगे तो कितने जीव आएंगे, संख्या थी आ सकते हैं, इस तरह से सोचना है। अभी नाना जीवों की अपेक्षा लगातार का काल, तब जघन्य कालानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय, ये सूक्ष्म सांप्राय क्षपक के अंतिम समय में, और उत्कृष्ट सत्व काल संख्यात समय है। ये क्यों? क्योंकि लगातार हर समय कोई ना कोई अगर सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में आवे तो संख्यात ही जीव आएंगे। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है, जो जघन्य नहीं है उसको छोड़कर जो कोई उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जो कुछ हमने देखे हैं तो हमेशा ही होगे, क्योंकि बिना मोहनी के कोई जीव ऐसे यहाँ दसवें गुणस्थान के नीचे तो रहेगी ही नहीं कोई। इसी प्रकार अब ये जो कथन है कौन सा, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट संख्यात, इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकी, ये कब होता है जघन्य? अंतिम समय में, और वो भी सम्यक्त्व के साथ, पहले में पहले अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व उत्पन्न किया होना चाहिए, अनंतानुबंधी की विषय योजना कंटिन्यूअस समय तो बना रहे और फिर अंत में उसके जघन्य स्थिति पाएगी, तो ये संख्यात समय घटित होंगे। सामान्य मनुष्य, क्योंकि ये जो क्षपक की बात सामान्य मनुष्यों में भी घटित होती है, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, ये तीन प्रकार के मनुष्य, ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, ऊपर भी पहले नरक के नारकी को छोड़ा था और यहाँ भवनवासी अंतरों को छोड़ा है। क्यों? वहां जघन्य कब होता है? असंगी में से उत्पन्न होने वाले जी, उनको संख्यात नहीं गिनाया है। दूसरे से लेकर छठी तक, हाँ जघन्य करने वाले जीव, मिनिमम पॉसिबल क्योंकि ऐसे नारके होने चाहिए कि वहां जाने पर उन्होंने समय तो प्राप्त किया और अनंतानुबंधी की विषय योजना की है और लगातार अपने अपने नरकों में, यानी पूरा समय तो भी बना रहना चाहिए और अंतिम समय में प्राप्त होता है, तो अंतिम एक ही समय में प्राप्त होगा वो, तो ऐसे कंटिन्यूस समय संख्यात हो गए अपने अपने नरक की। हाँ देखो, हमने यहां से पढ़े थे ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव अने उत्कृष्ट सत्व का जो संख्यात समय कहा था वह भी जगन्य का उत्कृष्ट सत्व का, जगन्य स्थिति का उत्कृष्ट सत्व का, ये कब होता है? अपने अपने स्थिति के अंतिम समय में होगा, वो भी उत्कृष्ट आयु वाले होने चाहिए और बाकी जो कंडीशंस जहां वहां होगी उसको लेना है। सर्वार्थ सिद्धि में भी हमने देखा था जगन्य किसके होगा, क्षायिक समय दृष्टि है, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है और फिर सर्वार्थ सिद्धि में आया हुआ है उसके अंतिम समय में, तो ऐसे जो संख्यात हो गए, लगातार की बात है। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, ये तो सूक्ष्म सांप्राय में घटित हो गए। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, ये भी सूक्ष्म सांप्राय वाले हो गए। वैक्रिक कायोगी, वैक्रिक कायोग में हमने देखा था अंतिम समय में जहां देवों में जघन्य बताया था वहां उनका वैक्रिक काय योग हो जाए तो वहां उनका जघन्य घटित होगा। तीनों वेद वाले अपने अपने वेद के उदय के साथ क्षपणा का अंतिम समय उनका वेद का। क्रोधादि चारों कषाय वाले यहां भी 9वां गुण स्थान वाले क्षपक लेने। आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, इनमें भी वो तो क्षपक लेने। विभंग ज्ञानी में जघन्य जब हमने देखा था, नवे ग्रवेक में वो अंतिम समय में जाके मिथ्यात्व में आया है तो जघन्य स्थिति उसकी। संयत सामायिक संयत, संयत में तो 10वां गुण स्थान होता है, सामायिक और छेदोपस्थापना का 9वें का अंतिम समय वहां घटित करना है। परिहार विशुद्धि संयत में भी हमने देखा था कौन सा है, हाँ क्षायिक है, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, सर्वार्थ सिद्धि में जाके 33 सागर में से आया है, मनुष्य में परिहार विशुद्धि प्राप्त की और उसका अंतिम समय संयता संयत या ऐसा जीव लिया अभी परिहार विशुद्धि वाला जो लिया था परिहार विशुद्धि में से वो संयता संयत में आया है ऐसा लेना। चक्षु दर्शनी में तो 10वां गुणस्थान घटित होता है, अवधि दर्शनी में भी। पीतादि तीन लेशा वाले जो हैं, पीतादि तीन लेशा वालों में तो 7वां गुणस्थान भी घटित होता है या अपने अपने देवों में भी होता है वो। भव्य भव्यों में 10वां गुणस्थान होगा। सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि में जघन्य की बात है ना, कृतकृत्य का अंतिम समय। क्षायिक सम्यक दृष्टि में भी कब लेना है वो तो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय। हाँ हाँ कहाँ पर, हाँ पितादि तीन लेशा वालों में मनुष्य उसमें इसमें लेना है, श्रेणी के सन्मुख वाले ले लेंगे ना वहां पर। तीन लेशा वाले में शुक्ल लेशा वाले को अलग लेना, शुक्ल लेशा वाले में तो क्षपक को लेना है और पीत और पद्म में हाँ हम निकाल के देखेंगे। जघन्य स्थिति विभक्ति स्वामित्व निकालना है क्या, पेज नंबर 24 होगा, 24 में से 25 पर। हाँ हाँ जैसे हमने परिहार विशुद्धि में देखा ना, वही परिहार विशुद्धि के अंतिम समय में जिसकी पीत लेशा होगी उसको वो पीत लेशा वाला जगन्य। अभी जो हमने परिहार विशुद्धि में घटित किया था वैसे तो पीत और पद्म में वैसा लेना है। परिहार विशुद्धि का अंतिम समय, परिहार हाँ, वो उसमें से श्रेणी चढ़ेगा, ऐसा जीव लेना ना तो श्रेणी चढ़ेगा, तो शुक्ल लेशा हो जाएगी। अंतिम समय में पीत होगा या पद्म होगा, कोई भी हो सकते हैं ना। संज्ञा और आहारक जीवों के कहना चाहिए, जानना चाहिए। संज्ञा और आहारक में तो सूक्ष्म सांप्राय घटित होता है, तो वहां भी वही समझना। ये लगातार ऐसे कितने जीव होगी उसकी बात है, तो संख्यात समय होते हैं। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल एक समय। पूरे नारकियों में जघन्य स्थिति लेनी है तो वही वो असंगी में से आए हुए, और दूसरे से आगे अगर हम देखते हैं तो अपने अपने आयु के अंत में जो समय दृष्टि है वगैरह, जो अभी हमने देखे थे कंडीशंस, तो नारकियों में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले लेना है तो असंगी में से आए हुए विग्रह के दूसरे समय में। देखो, आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मोहनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल एक समय, यानी लगातार हो तो हो, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय होगा, और उत्कृष्ट सत्वकाल लगातार होता रहे तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, लगातार इतने जीव असंगी में से वो जघन्य स्थिति के साथ आ रहे हैं। हाँ, दूसरी से छठी वाले में तो संख्या समय लिया था, क्यों? वो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, उत्कृष्ट आयु होनी चाहिए, लगातार सम्यक तो बना रहना चाहिए, और ऐसे ही कि पहले अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया और इमीडिएटली अंतर्मुहूर्त में विषय योजना की, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है। ऐसा जीव अंत में तो वे संख्यात हो गए, और यहाँ असंगी में से उत्पन्न होने वाले असंगी के योग्य जघन्य स्थिति की थी, और उस स्थिति के साथ यहाँ विग्रह में है तब तक और कम बंध, उस स्थिति से भी जघन्य बंध बांधेगा तो दो निशेक और गल जाएंगे। तो लगातार ऐसे कोई ना कोई जीव आता रहे तो आवली का असंख्या अथवा भाग काल तक आएंगे। जीव कितने आएंगे, भले दो चार पांच भी आएंगे, लगातार कंटिन्यूस आते रहेंगे हर समय, तो कितने काल तक आएंगे, आवली के असंख्यात विभाग तक। जैसे अभी हमने मनुष्यों में देखा था, अन्य अन्य पर्याय में देखा था, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल कितना है, सर्वदा है, क्योंकि इन जीवों को छोड़कर बाकी सभी अजघन्य वाले ही है। दूसरे नरक के अंतिम समय में जिनकी जघन्य होती है, दूसरे नरक के योग्य जघन्य, वो सभी नारकियों की अपेक्षा अजघन्य ही कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? फिर से देखो, जो असंगी में से आया है तो असंगी में जो कितना स्थितिबंध होता है, हजार सागर का है ना, तो उससे भी कम कुछ उस वहां स्थिति हुई थी, तो नारकियों के लिए जघन्य उतना है, बराबर। अब जो दूसरी पृथ्वी में सम्यक्त्व के बाद जिसने इतने निशेक गलाए हैं वगैरह वगैरह, कितना हुआ, अंत कोड़ा कोड़ी सागर होगा। तो मैंने ऐसा कहा, सभी सातों ही नरकों की अपेक्षा जो जघन्य कहने में आता है, जो पहले नरक में जो घटित होता है असंगी में से आया हुआ, तो सबकी अपेक्षा जो जघन्य कहा, तो सभी नारकियों में इन जीवों के अलावा वो दूसरे नरक के लिए जो जघन्य था उनके लिए वो ये असंगी में से आए हुए से अजघन्य हुआ ना। असंगी में से आए हुए की कितनी थे, मान लेते हम हजार सागर है, और वो दूसरे नरक के अंत समय में उसने कितने की, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। तो यहाँ सामान्य नारकियों में जब जघन्य कहेंगे तो अकेले वो असंगी में से आए हुए जीव हो गए, उनके अलावा बाकी सब अजघन्य है। अब जब नरकों में हम भेद करेंगे, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, तो उसमें अपने अपने नरक की जो अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति के साथ आए हैं, सम्यक्त्व वाले हैं, विसर्जना की है, उनकी जघन्य स्थिति अंतिम समय में होगी। उनकी अपेक्षा अपने अपने नरक के जो बाकी जीव है उनकी अजघन्य होगी। एक सामान्य कथन होता है और उसमें हम किसी विशेष को पकड़ेंगे तो अलग कथन हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहते देखो, अजगण्य वालों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार पहले पृथ्वी के नारकी सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच कैसा, इसी प्रकार ने जगन्य वालों का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट आवली का असंख्यात्वा भाग और अजगन्यों का सदा काल, यही कथन और कहां कहां होगा? तो पहली पृथ्वी के नारकी में। क्यों दूसरी पृथ्वी के नारकी में क्या होता है? नहीं, लगातार संख्यात समय होता है, ख्याल है ना? हाँ, जगन्य वालों का उत्कृष्ट काल लगातार जो निरंतर काल वो संख्यात समय है और यहाँ आवली के असंख्यात विभाग है। तो ऐसा ही और कहाँ कहाँ होगा? पहले पृथ्वी के नारकी सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच तो सभी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में एक समय जघन्य। अभी जघन्य कब होता है? पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जघन्य कब होता है? पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जघन्य की बात कर रहे हैं। हाँ, पहला और दूसरा दोनों समय लिए, एकेंद्रियों में से हत समुत्पत्ति करके आए हैं, पहले और दूसरे समय में लिया था हमने। पेज नंबर बता दो। हाँ, 22 नंबर पर देखना। देखो 36 नंबर का जो पॉइंट है, पंचेंद्रिय पर्याप्त और योनिनी इन तीन प्रकार के तिर्यंचों में मुनि की जघन्य स्थिति किसके होती है? उत्कृष्ट तो वो स्वयं करते हैं, पर जघन्य एकेंद्रियों में से जो लौट कर आए हैं, जो एकेंद्रियों में से लौट कर आया है, जिसने स्थिति का हत समुत्पत्ति किया है, हत ने घात किया है, हत शब्द और घात शब्द वो उससे आया है, और जो पहले या दूसरे विग्रह में स्थित है, उस पंचेंद्रिय पर्याप्त या योनिनी तिर्यंच के मुनि का जगन्य स्थिति सत्व होता है। अब कहते सामान्य देव कहते हैं तो वो असंगी में से आए हुए, और विशेषता से भवनवासी व्यंतर में भी यही घटित होगा, जैसे हमने नरक में सामान्य नरक में भी और पहले नरक में भी घटित किया था, ऐसे यहाँ पर भी होगा। सभी विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों के कहना चाहिए, सारे एकेंद्रियों में से हत समुत्पत्तिक वाले यहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो लगातार होंगे तो आवली के असंख्यात विभाग काल तक होंगे, और अजगण्य वाले हमेशा ही पाए जाएंगे क्योंकि ये मार्गणाएं हमेशा ही पाई जाती हैं। सातवीं पृथ्वी में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्वकाल एक समय है और उत्कृष्ट सत्वकाल पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। क्या कहना चाहते हैं? एक जीव की अपेक्षा हमने क्या देखा था? सातवीं पृथ्वी में मुनि की जघन्य स्थिति कब होती है? तो जो उत्कृष्ट 33 सागर के आयु के साथ आया है, अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया और एक अंतर्मूर्त में विषय योजना की और आयु के अंत में एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में जाने के पश्चात भी वहाँ जो स्थिति बंद करता रहा वो स्थिति से भी कम वाला करता रहा, ऐसा ही जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद या तो उत्कृष्ट करेगा या उतना ही करेगा। एक समय के लिए जघन्य हुआ और बाद में उत्कृष्ट हुआ तो एक समय जघन्य घटित हुआ एक जीव की अपेक्षा, और जितनी स्थिति है उतना ही अगर बंद लगातार करता रहे तो अंतर्मूर्त करेगा, तो सातवें नरक के नारकियों में एक जीव की अपेक्षा जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बताया, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। अब नाना जीवों की अपेक्षा विचार करना है, सातवें नरक में नाना जीव कोई कम से कम समय तक वो जघन्य में रहेगा तो कितना है एक समय, ये तो घटित होता है। अब जो एक जीव अंतर्मूर्त तक रहा, फिर कोई दूसरा जीव आया अंतर्मूर्त तक रहा, फिर तीसरा जीव कोई आया, ऐसे लगातार रहे तो पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक। फिर पढ़ते, सातवीं पृथ्वी में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय है और उत्कृष्ट सत्व काल पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है, क्योंकि सातवें नरक में तो हमेशा ही नारकी पाए जाएंगे, तो वो सारे अजघन्य कहलाएंगे, तो वो तो हमेशा ही रहेंगे। अब तीर्यंचों में मोहनीय की करना मीहनीय होगा, मोहनीय की तीर्यंचों में तीर्यंच जब कहा तो जघन्य करने वाले कौन है? बादरे के लिए पर्याप्त जीव मिनिमम पॉसिबल करेंगे तो वो शांत रह के निरंतर है, निरंतर रहते, और उनकी संख्या भी हमने कितनी देखी, जघन्य करने वालों की अनंत देखी और अजघन्य वालों को भी अनंत देखी, तो उनका काल कितना रहेगा? सदा काल रहेगा। जघन्य वालों का भी और अजघन्य वालों का भी सदा काल तीर्यंचों में घटित होता है, यही बात एक इंद्रियों में घटित होगी। तो देखो, तीर्यंचों में मोहनीय की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्वकाल सर्वदा है। इसी प्रकार ऐसा और कहां कहां होगा? सभी एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक पर्याप्त सूक्ष्म, पृथ्वी का एक अपर्याप्त, जल का एक बादर, जल का एक बादर, जल का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, जल का एक अपर्याप्त, अग्नि का एक बादर, अग्नि का एक बादर, अग्नि का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक पर्याप्त सूक्ष्म, अग्नि का एक अपर्याप्त, वायु का एक बादर, वायु का एक बादर, वायु का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक पर्याप्त सूक्ष्म, वायु का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सभी वनस्पति का एक, सभी निगोद, औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, कृष्णादि तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। सूक्ष्म भी लिए और बादरों में अपर्याप्त लिए हैं, बादर पर्याप्तों को छोड़ा है। कौन से वाले जीव लिए यहाँ? कि जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव का उत्कृष्ट काल, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य का उत्कृष्ट काल। अब ये ऊपर जो हमने देखे थे कौन से, जब जनरल पृथ्वी कहेंगे या बादर भी पृथ्वी कहेंगे, फिर बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त को लिया, यानी अपर्याप्तों में तो हमेशा ही रहेंगे जघन्य स्थिति वाले, ये पर्याप्तों को अलग निकाला है, उनमें लगातार रहेंगे तो पल्ले का असंख्यात भाग काल तक रहेंगे, वो नीचे पढ़ेंगे। अभी हम अभी जो हमने मार्गणाएं पढ़ी है उनकी अपनी अपनी जघन्य लेना, सबका जघन्य एक समान है बात, ऐसी बात मत करना, क्योंकि पर्याप्तों का जघन्य अलग होगा, अपर्याप्तों का जघन्य अपना अलग होगा। हाँ, जघन्य करेगा वो बात सही है, परंतु ये नाना जीवों की अपेक्षा क्या हमेशा ही वो होंगे क्या नहीं होंगे, ये बात यहाँ। हाँ, जघन्य जघन्य लिया है ना पहले, यहाँ तो जघन्य की बात हमेशा है कि नहीं है, अजघन्य तो सर्वदा ही है। जब जनरल बात करते हैं, तिर्यंचों में हमेशा है, एकेंद्रियों में हमेशा है, अकेले पृथ्वी कायिक में हमेशा है, बादर पृथ्वी कायिक में हमेशा है, परंतु बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तों में हमेशा है, ऐसा लिया। ये जो अभी हमने देखी है, जो जो मार्गणा है उनकी अपनी अपनी लेन, टोटल वाले, हाँ सर्वकाल वाले, वैसे बादर वनस्पति का एक पर्याप्त भी सर्वकाल हो गए, चार सावर का है बादर पर्याप्त भी सर्वकाल है, परंतु उसमें लगातार जघन्य 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 करने वाले लगातार नहीं है, ये बात बताना चाहते। जो पर्याय की अपेक्षा ही जघन्य लेना, मार्गणा अलग से गिना ही है ना, तो जहाँ आदेश की बात चल रही है, तिर्यंच गति में कथन उनके समान है, परंतु हर एक मार्गणा का अपना अपना जघन्य अलग होगा। जैसे हमने नारकियों में घटित किया, उनका अपना अपना जघन्य अलग है, पहले नरक का अपना जघन्य अलग है, दूसरी से लेकर छठी का अपना अपना जघन्य अलग है, तो यहां भी अपना अपना जघन्य घटित करना है। देखो बादर जीवों में पर्याप्त जीव कम है और अपर्याप्त ज्यादा है, कितने ज्यादा है, असंख्यात गुना ज्यादा है। जब बादर जीवों की हम बात पृथ्वी कायिकों के लेते, बादर पृथ्वी कायिकों में हमें लेना है पर्याप्त अपर्याप्त का प्रमाण, तो असंख्यात में से एक भाग तो पर्याप्त है और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त है, और उसमें भी जघन्य करने वाले लगातार होने चाहिए हर समय वाले, तो वो पल्ले का असंख्यात भाग घटित होता है। और चूंकि अपर्याप्त असंख्यात गुणा है, तो उसमें जो उनके योग्य जघन्य है वो तो हमेशा ही पाए जाएंगे। अभी सूक्ष्म में बादर से सूक्ष्म जीव ही ज्यादा है, बादर और सूक्ष्म का रिलेशन आप निकालो, तो बादरों से सूक्ष्म कितने हैं, अनंत गुणा तो नहीं होते, हाँ असंख्यात गुणा हो जाएंगे सूक्ष्म जीव, और उनमें पर्याप्त उनसे अपर्याप्त संख्यात गुणा होते हैं सूक्ष्मों में। सूक्ष्मों में पर्याप्त कम है, सॉरी पर्याप्त ज्यादा है, संख्यात गुणा है और अपर्याप्त, हाँ संख्यात भाग है। हमने अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में देखा था ना, हाँ तो उसमें तो दोनों को लिया है, क्योंकि उनकी संख्या ही ज्यादा है। बादरों से सूक्ष्म असंख्यात गुणे हैं, तो सूक्ष्म तो ज्यादा ही जीव है, और उनमें सूक्ष्म उनकी अपेक्षा से जो जघन्य है वो भी हमेशा ही रहेंगे, परंतु बादर में वो भी अपर्याप्त जीव, असंख्यात भाग का भी असंख्यात भाग, नहीं समझे। बादर में देखो, बादर एक भाग होगा तो सूक्ष्म असंख्यात भाग है, बादर में पर्याप्त एक भाग होगा तो अपर्याप्त असंख्यात भाग है। अब सूक्ष्म जो असंख्यात गुणा थे उसमें अपर्याप्त एक भाग है तो पर्याप्त संख्यात भाग है, यानी संख्यात गुणा है। तो यहां बादरों में पर्याप्त जीव कम हो गए, तो उसमें लगातार अभी लगातार जघन्य करने वाले जीव लेना है, नाना जीवों की अपेक्षा लगातार कर कोई ना कोई है जघन्य वाला, तो कब तक होगा, तो वो आगे चल के सर्वदा कहां बताया, सर्वदा है तो तिर्यंचों में सर्वदा जब कहेंगे तो तिर्यंचों की अपेक्षा जो सर्वदा है वो सर्वदा कहेंगे। तो जब तिर्यंचों की अपेक्षा सर्वदा कहते हैं तो जो तब सभी एकेंद्रिय लिए। अब हम जब कायिक कहते हैं तो अलग अलग कायिक को अलग अलग गिनना है। वायु कायिकों में हमेशा वो जगन्ने वाले अन्य काय वाले हो गए, नहीं समझे? बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव ही जगन्य करते हैं, तो आप कहेंगे बादर पर्याप्त वो जगन्य वाले जीव भी हमेशा हो गए, मान्य हमको। परंतु क्या उसमें सभी पांच कायिक वाले हैं? उसमें वनस्पति कायिक को तो सर्वदा में लिया है, तो अन्य चार कायिकों में लगातार जगन्य जगन्य सर्वदा काल नहीं है। कायिकों में सर्वकाल रहेगा, बादरों में सर्वकाल रहेगा, परंतु कायिकों के बादर के पर्याप्तों में सर्वकाल नहीं है। जब एकेंद्रिय में कहते तो सभी काय उसमें आ गए, एकेंद्रिय की बात करेंगे तो सभी कायिक पांचों कायिक उसमें आ गए। और जब एक एक काय को अलग गिनाते हैं तो फिर उसमें लिमिटेशंस आती है। उसमें भी एक एक काय को लेते हैं तो उसमें सर्वदा काल है, सर्वकाल है। अकेला पृथ्वी काय कहेंगे तो सर्वकाल है, अकेले जल काय कहेंगे तो सर्वकाल है, अकेले बादर पृथ्वी काय कहेंगे तो भी सर्वकाल है। परंतु बादर पृथ्वी काय अपर्याप्त सर्वकाल है, पर्याप्त को अलग निकाला है। अब ये सभी बादर पर्याप्त जो है, कौन से? पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, सभी को इकट्ठा करो तो सर्वकाल कहेंगे। एक एक को अलग करो तो उसमें तो लिमिटेशन, हाँ, क्योंकि अन्य काय वाला करेगा कोई उस समय। जब सर्वदा कहते हैं तो पृथ्वी काय के बदले वायु काय करेगा कोई, अग्नि काय करेगा, जल काय करेगा। इस तरह से कायिकों में अगर हम भेद करते हैं तो उसमें भी बादरों को अलग निकाला, बादर पर्याप्तों को अलग निकाला है। देखो अभी जो हमने ऊपर पढ़ी थी लिस्ट, तिर्यंचों में सदाकाल बताया, एकेंद्रियों में सदाकाल बताया। जब एकेंद्रिय कहा तो सभी एकेंद्रिय कहा। सभी एकेंद्रिय का अर्थ क्या है? बादर एकेंद्रिय भी, सूक्ष्म एकेंद्रिय भी, बादर पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, सूक्ष्म पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। तो बादर पर्याप्त उनको लिया ना उन्होंने, परंतु एक एक कायिकों को अलग गिनाएंगे तो उन पर्याप्तों को सदाकाल में नहीं लिया। ख्याल है ना? एकेंद्रियों को गिनेंगे तो सारे कायिक उसमें इंक्लूडेड है, तब तो घटित होता है। सामान्य से सब कायिक आ गए, हाँ, चार काय वाले जो है बादर पर्याप्तों को उसको अलग निकाला है, उसमें सदाकाल नहीं कहेंगे। क्योंकि एकेंद्रियों की अपेक्षा कोई ना कोई काय वाला तो करेगा ही सूक्ष्म, तो वो तो सदाकाल रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए उनको छोड़ा है इसमें से। अब हम आगे को पढ़ेंगे, 151 नंबर वाला, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। मनुष्य, हाँ, फिर से दोबारा देखिए, अभी हमने तिर्यंचों में क्या घटित किया है? मोहिनी की जघन्य स्थिति वाले भी हमेशा हो गए। तिर्यंचों में मोहिनी की जघन्य स्थिति किसके होती है? क्योंकि हम तिर्यंचों में सभी वैरायटी है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, तो तिर्यंचों में जघन्य किसके होगी? पंचेंद्रिय के होगी क्या एकेंद्रिय के होगी? एकेंद्रिय की होगी। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रियों का जो स्थिति बंधन होता है वो तो अंत कोड़ाकोड़ी का तो होगा ही हो, मोहिनी की अभी मिथ्यात्व की बात चल रही ना यहाँ पर, तो अंत कोड़ाकोड़ी का होगा ही उसको। उत्कृष्ट कितना होगा? 70 कोड़ाकोड़ी सा। अब उनसे असंगी का 1000 तक होता है। अब पंचेंद्रियों में बांध कर इसमें उत्पन्न हो सकते हैं, फिर भी उसमें कुछ तो घटेगा। अब चतुर इंद्रियों की 100 सागर तक बांधते हैं मैक्सिमम, तीन्द्रिय वाले 50 सागर, द्विन्द्रिय 25 सागर और एकेंद्रिय 1 सागर। वो तो उत्कृष्ट बंध का बात है। एकेंद्रिय में क्या होता है? स्थिति तो जगन्य बनती ही बनती है, यानी 1 सागर से भी कम बंधेगी ही, परंतु जो जितनी सत्ता में पड़ी है स्थिति, कोई पंचेंद्रिय में से भी आया है और वहाँ बहुत सारी स्थिति पड़ी है, तो वहाँ क्या होता है एकेंद्रिय में जाने के बाद? स्थिति कांडक घात होते हैं, जैसे श्रेणी में होते हैं ना, या उपशम सम्यक के पहले होते हैं। हम देखा प्रायगलब्धि में आता है तो स्थिति कांडक घात होते हैं, फिर भी कांडक घात होके होके कितना तक रहेगा? अंत कोड़ाकोड़ी सागर तक रहेगा, उससे कम नहीं होगा। समय तो प्राप्त करने के समय क्षपक श्रेणी में हो जाएंगे कम, उसके बाद यहां नहीं कम कर रहे। तो एक केंद्रीय में ही ये विशेषता है कि वहां कांडकों के घात होते, कांडकों में होते घात। तो वहां घात होते 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 जिसको सहत समुत्पत्ति कहते हैं, तो उनके योग्य जो मिनिमम पॉसिबल है तो घात करके इतना हो गया, इतनी मिनिमम स्थिति हो गई, उसको कहेंगे हत समुत्पत्तिक। और ऐसा जीव जो मिनिमम पॉसिबल बंध कौन करता है, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव। एकेंद्रिय के योग्य उत्कृष्ट कौन करता है, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त। और एकेंद्रिय के योग्य जघन्य कौन करता है, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त। ये दोनों ओर की जो लिमिट है वो एकेंद्रिय पर्याप्तों की होती, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। अब करने वाले तो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त है, परंतु तो हमेशा ही वो पाए जाएंगे, उनकी अपेक्षा तो सर्वकाल है, परंतु उसमें बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में हम भेद करेंगे, वनस्पति काय को अलग करेंगे, अग्नि काय, वायु काय को, पर्याप्तों को, बादर पर्याप्तों को, तो वे तो सर्वकाल नहीं है। सर्वकाल ने कोई ना कोई उसमें से होगा, उस अपेक्षा से सर्वकाल है। अब इन कायकों को हम सेपरेट करेंगे तो उनमें सर्वकाल कौन से, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, इनको अलग अलग गिनेंगे तो उनमें सर्वकाल घटित नहीं हो रहा। परंतु जब हम बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों को लेते हैं तो उनमें तो सदाकाल घटित होता है, इसलिए सभी एकेंद्रीय लिए यहां पर। कायकों में, कायिकों में जो डिफरेंस किए उन्होंने, काय मार्गणा के आलाप यानी कथन अलग है, उसके भेद अलग है, और एकेंद्रियों के भेद अलग है। जब एकेंद्रियों के भेद करते तो एक सामान्य एकेंद्रिय, फिर एकेंद्रिय में बादर एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय, ऐसे दो भेद करेंगे। फिर बादर एकेंद्रिय में बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त करेंगे। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, इस तरह से उसके भेद होते हैं। उन सभी भेदों में तो हमेशा है, काय मार्गणा की अपेक्षा भेद करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पांच कायिक को अलग हो गया। एक एक कायिक में फिर बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त अपर्याप्त, उसके इतने भेद हो गए। उन भेदों को गिनेंगे तो पृथ्वी का एक के बादर में, यानी बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, वो सदाकाल नहीं है, परंतु बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त अपर्याप्त, वो सदाकाल है। ऐसे अन्य में भी, जल का एक में, सब जगह ऐसा ही घटित करना। जब पृथ्वी का एक इन जनरल कहेंगे तो सदाकाल है, जगन्य वाले बादर पृथ्वी का एक कहेंगे तो सदाकाल है, परंतु बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त अगर लेते हैं वो तो सदाकाल जगन्य वाले नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि कर्ण मिनिमम पॉसिबल वही करेंगे, परंतु वो नहीं रहेंगे, तो वायु कायिक रहेंगे, जल कायिक रहेंगे, अन्य रहेंगे, परंतु वो नहीं रहेंगे। काय की अपेक्षा भेद डाले ना हमने उसमें, ख्याल में आई बात ही, अभी पूछना हमारा पक्का हो जाएगा कि नहीं तो विचार करते हैं ना, नहीं तो लिस्ट पढ़ने में क्या है, हम तो लिस्ट पढ़ जाते, परंतु क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, फिर जब ये कहते हैं ना यहाँ वाला कुछ मन में आते हैं, ये ऐसा क्यों, तो फिर उसके प्रति अपने उपयोग भी जाता है और विचार भी चलते हैं। कल बात आई थी ना वो 49 भंग, तो पहले मैं फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था, मैंने ये क्या सब जमेला है, इतने दो पेजेस केवल भंग पढ़ना, उसमें क्या मजा नहीं है कुछ तो थोड़ा सोचते तो उस पर फिर उसकी बात ख्याल में आती है।
देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे 151 नंबर का जो पॉइंट है उसको देखते हैं। मनुष्य अपर्याप्तकों में मोहनी की जघन्य स्थिति वाले जीवों का जघन्य सत्वकाल एक समय है और उत्कृष्ट सत्वकाल आवली का असंख्यात्वा भाग है। देखो अभी
हाँ, ये लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की बात चल रही है। ये कैसी मार्गणा है? सांतर मार्गणा है। जब हमने उत्कृष्ट की बात देखी थी तो उत्कृष्ट कब था इसमें? पहले समय में। अब यहाँ बात किसकी चल रही है? जघन्य की बात चल रही है। तो मनुष्य अपर्याप्तों में मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय है। अब यहाँ हाँ, जघन्य भी पहले समय क्यों? एक इंद्रिय में से आया हुआ है, हत समुत्पत्ति करके यहाँ आया है। अब ऐसे जीव, अभी नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, तो नाना जीवों की अपेक्षा लगातार जघन्य के साथ इसमें जन्मने वाला चाहिए, तो वो कितना होगा? उत्कृष्ट सत्व काल आवली का संख्यात भाग। उत्कृष्ट के साथ जो संगी पंचेंद्रिय में से आए हुए, उसको भी हमने देखा था आवली का संख्यात भाग, और यहां भी जघन्य के एक इंद्रिय में से आने वाले लगातार आएंगे तो भी आवली का संख्यात भाग। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्व काल कितना है? जघन्य दो समय कम खुद्दा बहुग्रहण प्रमाण या एक समय है, और उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। तो दो समय कम क्यों कहा? हाँ, दो विग्रह में दो समय कम किया, या एक समय कैसे घटित होगा? नहीं, हाँ अजघन्य स्थिति विभक्ति वालों का पहले समय में अजघन्य था, दूसरे समय में जघन्य हुआ और तीसरे समय में अजघन्य हुआ। तो जो दोनों ही समय में जघन्य था, सॉरी, दोनों ही समय में जघन्य रहा, उसकी अपेक्षा खुद्दा भवग्रहण में से दो समय कम कर दिया। मान लेते खुद्दा भवग्रहण 100 समय का है, कोई जघन्य स्थिति के साथ वहां जन्मा है, तो दो समय तक उसकी जघन्य ही रही, दो समय के बाद अजघन्य हुई, तो अजघन्य कितने काल तक रही? रिमेनिंग जो 98 समय तक अजघन्य रही, या एक समय है। एक समय कैसा है? तो पहले समय में अजघन्य था, फिर जघन्य हुआ दूसरे समय में, यह ऐसा कैसा हुआ? तो वहां स्थिति कम बंधी, तो वहां एक समय और गल गया, उसकी अपेक्षा जघन्य हुआ, तो दूसरे समय में जघन्य हुआ था, तो पहले समय में क्या था? अजघन्य। तो अजघन्य कितने काल तक रहा? एक समय तक। हमने नारके में भी ऐसा घटित किया था, असंगी में से आया हुआ, पहले समय में अजघन्य है, दूसरे समय में जघन्य हुआ, फिर अजघन्य हुआ, अंतर में हमने मिनिमम अंतर एक समय घटित किया था वहां। ऐसे यहाँ अजघन्य का लगातार काल एक समय घटित हो सकता है। नहीं आया ख्याल में? देखो, एक तो ये यहाँ क्यों घटित हो सकता है, क्योंकि ये सांतर मार्गणा है। क्या नरकों में अजघन्य एक समय होगा घटित? अजघन्य का काल तो एक समय घटित होगा, यानी अजघन्य की एक जीव की अपेक्षा एक समय घटित होता है। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय घटित होगा क्या अजघन्य का? क्योंकि वो जघन्य को अलावा बाकी सभी नारकी तो अजघन्य वाले ही है। अब यहाँ लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में देखिए, अब एक समय के लिए अजघन्य वाला था पहले समय में, तब वहां लब्धि अपर्याप्त मनुष्य में कोई मनुष्य ही नहीं था, और जो पहले समय में अजघन्य हुआ दूसरे समय में वही जीव जो एक होगा या दो चार हो गए जघन्य हो गए, और उस समय कोई और नया जीव वहां नहीं आया है, तो एक समय के लिए अजघन्य सिद्ध है। ये सांतर मार्गणा है, इसलिए इसमें पॉसिबल है। यानी ऐसे लेनी है कंडीशन, जब कोई भी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नहीं था, मान लेते हैं पांच जीव उसमें उत्पन्न हुए, दो समय तक जघन्य रहती है ना, रह सकती है, या पहले समय में अजघन्य, दूसरे समय में जघन्य हुई, तो एक समय के लिए वो अजघन्य रहे, फिर वे जघन्य में चले गए दूसरे समय में, और उस समय में नए कोई अजघन्य वाले वहां नहीं आए, तो एक समय के लिए ही अजघन्य घटित हुआ। क्योंकि कहीं से कंडीशन ली थी, जब लब्धि अपर्याप्त अवस्था में कोई नहीं था, ऐसे समय में ये आए थे, तो ये घटित हुआ। नारकियों में तो ऐसा नहीं होता है, नारकी तो हमेशा है ही है। ये मार्गणा ही सांतर होने से यहाँ ये ऐसी अटपटी बातें हम घटित कर सकते हैं। देखो, कोई जीव लब्धि अपर्याप्त नहीं था, बराबर। अभी मान लेते एक जीव या दो जीव या 25 जीव अजघन्य के साथ वहां आए, और दूसरे समय में उन्होंने जघन्य कर दी। नाना जीव तो है वहां पर अभी कौन सी कंडीशन में है, जघन्य में है। अब अजघन्य में दूसरा कोई जीव है ही नहीं है, क्योंकि पहले अंतर के काल के बाद ही वहां उत्पन्न हुए जीव हैं। हम देखते ना, लगातार कोई अंतर पड़े अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात विभाग तक, ऐसा हो सकता है कोई जीव लब्धि अपर्याप्त में है ही नहीं है, तो बाद में आए तो अजघन्य में आए और उन्होंने आने के पश्चात जघन्य कर दिया, हो सकता है ऐसा। तो एक समय के लिए अजघन्य है सभी जीव वहां आए हुए, दूसरे समय में वे जघन्य हुए हैं, वापस हो जाएगी उसकी बात नहीं है, वापस वे अजघन्य हो जाएंगे, पर वो तीसरे समय में हो जाएंगे, वहां अभी कोई जीव है ही नहीं हुए उपस्थित। तो पहले समय में अजघन्य थे वे ही जीव, दूसरे समय में जघन्य हुए, और तब और कोई नए नहीं आए हैं, तो दूसरे समय में पोजीशन क्या है, जितने हैं वो जघन्य में है, अभी अजघन्य वाला एक भी नहीं है, तो वो थे, वो एक समय के लिए ही थे, ऐसे हो सकता है, ये बात यहां बताते। इसलिए यहां दो समय तक जो लगातार जघन्य रहे, वो बाकी का भोग क्या करेंगे, अजघन्य में रहेंगे। अजघन्य, हाँ, जैसे हमने पहले मनुष्यों में कैसा घटित किया था, एक समय कम किया था। ये मनुष्यों में ही घटित करे, दो समय कम खुदा भोग्रहण या एक समय है, नहीं नहीं एक समय कम कहाँ लिखा, एक समय लिया उसी को तो घटित किया इतने देर तक, एक समय कम की बात क्या है, वहां लिख देते एक या दो समय कम, ऐसा लिख देते हैं। मिनिमम पॉसिबल घटित करना है, इसलिए दो समय में जघन्य रखा। या एक समय भी घटित कैसे होता है वो बात कही ना। और उत्कृष्ट पल्लोपम का असंख्या था भाग, अजघन्य 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 कोई ना कोई जीव, क्योंकि ये मार्गणा का लगातार काल कितना है, तो पल्ले के असंख्या था भाग काल है, इसलिए यहां पल्ले का असंख्यात भाग काल घटित होता है। अभी क्या बताया, पहले समय में अजघन्य था, दूसरे समय में जघन्य हुआ, तो पोजीशन क्या है, हाँ कम स्थिति बांधी, एक स्थिति गल गई, जैसे नरक में हम घटित करते हैं। कम स्थिति बांधने वाले का है और एक निश्चय गल जाएगा, वहां पर वो जघन्य हो जाएगा। जिसने में केंद्रीय में ही जघन्य करके आया है, उसके दो समय तक जघन्य घटित होता है। जो एकेंद्रीय में जघन्य से एक समय अधिक स्थिति रखी, उसने पूरा जघन्य नहीं किया है, ऐसा जीव आया है और वहां आने पर वो पहले जैसी बंद कर रहा है, तो उसने एक समय और घटाया। ख्याल में आए? नहीं आए? अच्छा, आगे पढ़ेंगे, विशेषार्थ शायद दे देंगे। अब 152 पढ़ेंगे। उतना जघन्य भी करेगा, और स्थिति ज्यादा थी उसकी और स्थिति से कम किया उसने, पहले भव के योग्य ही किया। अब यहां कहीं है क्या देखते हैं। यहां 87 पृष्ठ निकालना। उसमें बीच ही लब्धि अपर्याप्त मनुष्य का नाम है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17 लाइन में, 17वीं लाइन में मिला सबको? हाँ मिला भाई। हाँ, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में मोनियों की जघन्य स्थिति विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा से एक समय है। ये तो हमने देखा था कैसा, वो तो एक केंद्रीय में से हत समुत्पत्ति करके आए। यदि इनमें नाना जीव जघन्य स्थिति वाले हो तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यात भाग काल तक ही होंगे, क्योंकि लगातार एक केंद्रीय में से जघन्य स्थिति के साथ इसमें उत्पन्न हुए हैं। अतः इनमें जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय, जघन्य की बात चल रही है अभी, हमने जो अभी बहस की थी और जघन्य के बारे में की थी, और उत्कृष्ट आवली के असंख्यात भाग कहा, ये बात यहाँ तक तो आसान है, जैसे अन्य मार्गणा में घटित किए थे। जो एकेंद्रीय जीव दो विग्रह के साथ लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रथम विग्रह में अजघन्य स्थिति होकर दूसरे समय में जघन्य स्थिति होगी, और विग्रह के दो समय खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण आयु में से कम कर देने पर शेष आयु का काल भी अजघन्य स्थिति का है। यहां क्या किया था पहले उसने? पहले समय में अजघन्य किया था और दूसरे समय में जघन्य किया था, और इनको निकाल देंगे तो खुद्दा भव में से दो समय कम कर दिए, शेष आयु का काल भी अजघन्य स्थिति का है। हाँ, अतः एक जीव की अपेक्षा से हम देखते, परंतु जब वो एक समय वाला अजघन्य है, उस समय कोई दूसरा उसमें अजघन्य वाला उसमें उत्पन्न हुआ, ऐसा ले सकते? ख्याल में है ना? एक जीव अजघन्य के साथ उत्पन्न हुआ और दूसरे समय में जघन्य किया, उस समय कोई जीव जघन्य के साथ ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी ले सकते हैं ना वहां पर? अतः अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय या दो समय कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण कहा है। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य सांतर मार्गणा है, ये तो आगे की बात आ गया ही, जिसका उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र है, अतः अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्लोपम का असंख्यात भाग कहा। ये नाना जीवन की अपेक्षा अजघन्य स्थिति का काल दो समय कम खुद्दा भव ग्रहण कहा, या उन्होंने एक समय कहा, ये सांतर मार्गणा होने के कारण ये घटित होते हैं। अब हम यहाँ आते हैं 85 पृष्ठ पर। फिर पृथ्वी का एक आदि चार स्थावर काय बादर पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त। क्या कहते हैं? चारों स्थावर काय ने अलग अलग से लेने, उनमें बादर पर्याप्त, उनको जो हमने अभी बहुत चर्चा की थी, एक एक कायिकों को अलग निकाला। वनस्पति कायिक में लेना है तो बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, निगोद पर्याप्त उनको इसमें नहीं लिया है, क्योंकि वो उनकी संख्या अनंत है, उनमें तो कोई ना कोई समय हमेशा पाए ही जाएंगे। इन जीवों में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय है और उत्कृष्ट सत्व काल पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का सत्व काल सर्वदा है, क्योंकि ये तो निरंतर मार्गणाएं हैं, इनमें तो अजघन्य वाले तो हमेशा ही हो गए, परंतु जघन्य वालों में अलग अलग कायिकों को अलग करेंगे तो उनमें कभी एक समय के लिए हो गए और कभी लगातार रहे तो पल्ल्य के असंख्यात विभाग तक काल तक रहेंगे। परंतु एकेंद्रियों की अपेक्षा बादर एकेंद्रियों में अगर हम देखते हैं तो उसमें सर्वकाल है। जब हम बादर एकेंद्रिय कहते हैं तो बादर एकेंद्रियों में भी निगोद राशि पूरी आ गई, तो उनमें तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, उनमें सभी कायिक इंक्लूडेड है। वैकृत मिश्र काय योगियों में मोनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना सत्वकाल है? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट संख्या समय है। ये जघन्य कैसे घटित होगा? वैकृत मिश्र में असंगी जब आता है तो वैकृत मिश्र में जाता है तो उसके पंचेंद्रिय के योग्य हो जाएगा, वो उत्कृष्ट के उसके योग्य उत्कृष्ट हो जाएगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ हम इसे ले सकते हैं ना, वैकृत मिश्र के अंतिम समय में, जो पहले ही पहले उपशम श्रेणी आदि करके आया है या एक समय, तो वैकृत मिश्र का अंतिम समय ले सकते हैं। तो जघन्य एक समय होगा और उत्कृष्ट संख्या समय, लगातार कोई ना कोई आएंगे तो संख्या समय, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट पल्लवों का असंख्यात भाग। ये सांतर मार्गणा है, यह कोई ना कोई जीव आएगा, एक भी जीव आएगा तो अंतर्मूर्त काल तक तो रहेगा ही उसमें, इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त लिया। अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त और अजघन्य का उत्कृष्ट काल पल्लवों का असंख्यात भाग, उसके बाद वहां अंतर पड़ेगा। इसी प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के कहना चाहिए, उनमें भी अंतर्मूर्त और पल्ल्य का संख्या भाग। आहार का योगी जीवों में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय उसके अंतिम समय में होता है, मूल शरीर में प्रवेश करते समय, और उत्कृष्ट संख्या समय है, लगातार संख्यात जीव हो गए, तथा अजघन्य अघन्य हुआ है, अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय आहार का योग में, क्योंकि एक समय में मर सकता है कोई जीव, तो जघन्य सत्व काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, लगातार संख्या जीव भी रहेंगे तो अंतर्मूर्त तक ही रहेंगे। इसी प्रकार अपगत वेदी अकषायी सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। अब यहाँ जघन्य देख रहे हैं, उत्कृष्ट नहीं, तो जघन्य में वो मरण वाला नहीं लेना है। हाँ, श्रेणी क्षपक श्रेणी मानने वालों की अपेक्षा आहारक मिश्र का योगी जीवों में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्व काल एक समय अंतिम समय में होता है और लगातार होता रहे तो उत्कृष्ट संख्यात समय, और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मूर्त, क्योंकि कोई भी उसमें आता है तो अंतर्मूर्त काल तक तो रहेगा ही। विशेष चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।